एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये गॉडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एलिजाबेथ कोलबर्ट की अंडर अ व्हाइट स्काई, द नेचर ऑफ द फ्यूचर।
हाँ नमस्कार, और ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसा सवाल उठाती है जो थोड़ा शायद बेचैन करने वाला भी है।
कौन सा सवाल?
यही कि क्या हम इंसानों ने मतलब अपनी धरती को इतना बदल दिया है कि अब इसे बचाने के लिए हमें और ज्यादा दखल देना पड़ेगा, और वो दखल शायद ज्यादा खतरनाक भी हो।
मतलब क्या हम अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं? पहले समस्याएं पैदा की, अब उन्हें ठीक करने के लिए और बड़ी तकनीकें ला रहे हैं।
बिल्कुल, और आज के समय में ये सवाल बहुत ज़रूरी हो गया है। हम रोज़ सुनते हैं जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्रजातियां ख़त्म हो रही है, तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या तकनीक ही हल है
या फिर वो हमें और गहरे संकट में डाल देगी।
और इस मुश्किल पहेली को समझने में हमारी मदद कर रही हैं एलिजाबेथ कोलबर्ट।
हाँ, उनके बारे में थोड़ा बताया ना, वो कौन है?
एलिजाबेथ कोलबर्ट एक जानी मानी अमेरिकी पत्रकार है। वो द न्यूयॉर्कर जैसी बड़ी मैगजीन के लिए लिखती हैं।
और उन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है ना, पर्यावरण पर उनके काम के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है।
जी हाँ बिल्कुल, उनकी पिछली किताब थी द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, उसने तो दुनिया भर में काफी चर्चा बटोरी थी।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। वो बताती थी कि कैसे इंसानी कामों से प्रजातियां खत्म हो रही हैं।
बिल्कुल, और अंडर अ व्हाइट स्काई उसी कहानी को आगे बढ़ाती है। ये उन तरीकों को देखती है जिनसे हम इन संकटों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तरीके कई बार बहुत अजीब, बहुत अनूठे हैं।
और उनकी लिखने की शैली भी खास है ना, वो सिर्फ बैठकर लिखती नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, यही उनकी खासियत है। वो उन जगहों पर खुद जाती हैं जहाँ ये सब हो रहा है, चाहे वो लुजियाना के डूबते तट हों, या आइसलैंड के वो अनोखे प्रोजेक्ट्स, या ऑस्ट्रेलिया के कोरल रीफ्स।
अच्छा,
और वो सीधे उन वैज्ञानिकों, उन इंजीनियरों से बात करती हैं जो इन हैरान करने वाले समाधानों पर काम कर रहे हैं।
तो उनका नजरिया सिर्फ तारीफ वाला नहीं होता होगा।
नहीं, वो बहुत संतुलित नज़रिया रखती हैं। वो चीज़ों की गहराई में जाती हैं, सवाल उठाती हैं। उनकी लिखाई में एक तरह का सधा हुआ व्यंग भी झलकता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं।
तो किताब का जो मूल विचार है वो क्या है, ये एंथ्रोपोसीन युग वाली बात?
हाँ, एंथ्रोकोसीन मतलब वो युग जहाँ इंसान ही पृथ्वी पर सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। हम ग्रह के सिस्टम्स को बदल रहे हैं। कोलबर्ट कहती हैं कि शायद अब वो जमाना गया जब हम कह सकते थे कि प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दो।
मतलब अब हमें दखल देना ही पड़ेगा, हम मैनेजर बन गए हैं चाहे हम चाहें या ना चाहें।
हाँ कुछ ऐसा ही, एक तरह से अनचाहे मैनेजर, क्योंकि हमने इतना कुछ बदल दिया है कि अब चीजों को संभालना हमारी जिम्मेदारी बन गई है, या शायद मजबूरी।
और यही वो विरोधाभास आता है जिसका जिक्र आप कर रही थी।
बिल्कुल, कि जिन समस्याओं को हमारी ही तकनीक ने, हमारे विकास ने पैदा किया,
जैसे नदियों का प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन,
हाँ उन्हीं को ठीक करने के लिए अब हम और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा जटिल तकनीक का सहारा ले रहे हैं। ये एक चक्र जैसा है,
एक अंतहीन चक्रव्यूह, एक दखल फिर दूसरा दखल।
सही कहा, और किताब हमें इसी चक्रव्यूह की यात्रा पर ले जाती है। पहले पानी के सिस्टम, फिर जीवन यानी जेनेटिक्स में बदलाव, और आखिर में तो पूरे ग्रह के मौसम को बदलने की बातें।
ये दिखाता है कि कैसे वो जो नेचुरल और आर्टिफिशियल के बीच की लाइन थी वो धुंधली होती जा रही है।
बिल्कुल,
चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं इसे। पहला हिस्सा पानी पर है, शिकागो नदी वाला किस्सा।
हाँ शिकागो बहुत दिलचस्प है। 100 साल से भी पहले शहर की गंदगी मिशिगन झील में न जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, शिकागो नदी का बहाव ही उलट दिया।
पूरी नदी का रास्ता बदल दिया, कमाल है।
हाँ इंजीनियरिंग का तो कमाल था, पर इसका एक नतीजा निकला जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस बदलाव ने ग्रेट लेक्स और मिसिसिपी नदी सिस्टम को जोड़ दिया।
अच्छा, तो उससे क्या हुआ?
उससे ये हुआ कि मिसिसिपी की जो हमलावर एशियाई कार्प मछलियां हैं वो अब ग्रेट लेक्स की तरफ जाने लगी, और वो वहां की इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
तो अब उन्हें रोकने के लिए क्या कर रहे हैं?
अब उन्हें रोकने के लिए पानी के नीचे बिजली के बैरियर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फेंसिंग पानी के अंदर।
देखिए, मतलब नदी उलटने की इंजीनियरिंग ने एक प्रॉब्लम खड़ी की, अब उसे रोकने के लिए और इंजीनियरिंग।
हाँ
ये तो वही बात हुई, एक हस्तक्षेप दूसरे को जन्म दे रहा है।
यस
बिल्कुल।
फिर वो लुजियाना ले जाते हैं, मिसिसिपी नदी पर बाढ़ रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, लीवी जी ने कहते हैं।
हाँ।
बाढ़ तो रुकी होगी। बाढ़ रुकी, लेकिन वो जो उपजाऊ मिट्टी नदी अपने साथ डेल्टा तक लाती थी वो भी रुक गई।
ओ, तो डेल्टा का क्या हुआ?
नतीजा ये कि डेल्टा की जमीन धस रही है, समुद्र में डूब रही है तेजी से।
और अब?
अब इसका हल ये सोच रहे हैं कि उन्हीं बांधों में बड़े बड़े कटान बनाए जाएं, छेद किए जाएं, ताकि नदी का पानी और मिट्टी फिर से डेल्टा तक पहुंच सके।
मतलब जिस नेचुरल प्रोसेस को इंजीनियरिंग से रोका था, अब उसी की नकल करने के लिए और इंजीनियरिंग। ये तो सचमुच अजीब है।
है ना, पानी से आगे बढ़कर किताब वन्य जीवन में हमारे दखल की बात करती है, और यहाँ चीजें और भी चौंकाने वाली हैं।
जैसे वो डेविल्स होल पपफिश वाली कहानी।
हाँ, डेविल्स होल पपफिश। निवादा रेगिस्तान में एक छोटी सी गुफा में रहती है ये मछली, दुनिया की सबसे दुर्लभ मछलियों में से एक, बस कुछ ही बची हैं।
तो उसे बचाने के लिए क्या किया गया है?
उसे बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने करोड़ों डॉलर खर्च करके पास में ही उस गुफा की एक हूबहू कॉपी बना दी है, एक लैब में बनी नकली गुफा।
क्या बात कर रही हैं? एक नकली गुफा?
जी हाँ। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सच में संरक्षण है, या हमने बस उसे एक म्यूजियम का नमूना बना दिया है?
मतलब अगर वो अपने प्राकृतिक घर में नहीं जी सकती, सिर्फ इंसानी नकल में जी सकती है, तो जंगली होने का मतलब ही क्या रहा?
बिल्कुल, क्या हमने उसे बचाया या उसके जंगलीपन को ही खत्म कर दिया? ये मुश्किल सवाल है।
फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ का उदाहरण है, कोरल मर रहे हैं गर्मी और एसिडिटी से।
हाँ, और पारंपरिक तरीके काफी नहीं पड़ रहे हैं। तो वैज्ञानिक अब लैब में सुपर कोरल बना रहे हैं।
सुपर कोरल मतलब
ऐसे कोरल जो ज्यादा गर्मी झेल सकें। वो उनकी ब्रीडिंग को गाइड कर रहे हैं, एक तरह से डिजाइन कर रहे हैं। इसे नाम दिया गया है असिस्टेड एवोल्यूशन।
असिस्टेड एवोल्यूशन, विकास में मदद करना, सुनने में तो ठीक लगता है।
सुनने में ठीक लगता है, पर असल में हम विकास की प्रक्रिया में सीधा दखल दे रहे हैं। हम चुन रहे हैं कि कौन से गुण आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है ना?
हाँ बिल्कुल, और इससे भी आगे है जीन ड्राइव तकनीक, क्रिस्पर वाली।
हाँ, जीन ड्राइव्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो केन टोड मेंढक है, हमलावर प्रजाति है, बहुत नुकसान करते हैं। तो जीन ड्राइव एक ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो, मान लीजिए, बांझपन जैसे किसी गुण को पूरी आबादी में बहुत तेजी से फैला सकती है, पीढ़ी दर पीढ़ी।
अच्छा,
तो इससे किसी प्रजाति को खत्म किया जा सकता है?
सिद्धांतिक रूप से हाँ, कीटों को, हमलावर प्रजातियों को, ये एक जादू की छड़ी जैसा लगता है।
लेकिन इसके खतरे?
खतरे बहुत बड़े हैं। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया, अगर इसने गलत प्रजाति को निशाना बनाया, एक बार इसे छोड़ दिया तो वापस लेना लगभग नामुमकिन है। ये प्रकृति के साथ खेलने जैसा है, जिसके नियम हम पूरी तरह समझते भी नहीं।
बाप रे, ये तो डराने वाली बात है।
बिल्कुल।
और फिर किताब हमें ले जाती है हवा में, मतलब पूरे ग्रह के पैमाने पर जो दखल लेने की बात हो रही है।
जैसे वो आइसलैंड वाला कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट।
हाँ, कार्बफिक्स प्रोजेक्ट। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं, उसे पानी में घोलकर जमीन के नीचे चट्टानों में डाल रहे हैं।
और वो पत्थर बन जाती है।
हाँ, कुछ ही सालों में वो CO2 ठोस पत्थर बन जाती है। ये नेगेटिव एमिशन है, हवा से कार्बन हटाना।
ये तो कमाल है, फिर तो समस्या हल होगी।
इतनी जल्दी नहीं। कोलबर्ट बताती हैं कि अभी ये तकनीक जितनी कार्बन हटा पा रही है, वो हमारे कुल उत्सर्जन के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है।
अच्छा,
इसे वाकई असरदार बनाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर करना होगा कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। उसमें कितनी ऊर्जा लगेगी, कितने संसाधन लगेंगे, ये सब बड़े सवाल हैं।
और फिर आता है वो आइडिया जिसके नाम पर किताब का टाइटल है, अंडर अ वाइट स्काई, जियो इंजीनियरिंग।
हाँ, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट या SRM, मतलब धरती को ठंडा रखने के लिए सूरज की रोशनी को कम करना।
कैसे?
वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, स्ट्रेटोस्फेयर में, सल्फेट जैसे कणों का छिड़काव करके वो सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देंगे।
और आसमान सफेद दिखने लगेगा।
हाँ, थोड़ा सफेद या धुंधला। ये सुनने में लगता है कि चलो, क्लाइमेट चेंज का तुरंत हल मिल गया।
पर ये तो सिर्फ लक्षण दबाने जैसा हुआ ना, बीमारी का इलाज तो नहीं हुआ। CO2 तो हवा में उतनी ही रहेगी।
बिल्कुल, और इसके जोखिम अनगिनत। मौसम के पैटर्न बदल सकते हैं, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, ओजोन परत को नुकसान।
और वो टर्मिनेशन चौक वाली बात।
हाँ, वो सबसे डरावना है। अगर किसी वजह से ये छिड़काव रोकना पड़ा, मान लीजिए कोई जंग हो गई या पैसे खत्म हो गए, तो जो गर्मी अब तक दबी हुई थी वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ेगी। नतीजा, शायद महाविनाश।
बाप रे, ये तो पूरे ग्रह के साथ एक खतरनाक जुआ खेलने जैसा है।
सही कहा। तो इन सब कहानियों से कुछ बड़े विषय, कुछ बड़े सबक उभरते हैं। पहला तो है ये हस्तक्षेप का दुष्चक्र।
हाँ, ये तो बार बार दिखा, एक चीज ठीक करो दूसरी बिगड़ जाती है। शिकागो नदी, मिसिसिपी डेल्टा।
बिल्कुल, भारत में भी हम ऐसा देखते हैं, बड़े बांधों के असर या शहरों के फैलाव की मुश्किलें।
दूसरा बड़ा मुद्दा आपने बताया, प्रकृति की बदलती परिभाषा। अब प्राकृतिक क्या है?
हाँ, वो लैब में बनी पफिश की गुफा या वो डिजाइनर कोरल, ये सवाल उठाते हैं कि शायद अब प्रकृति एक मिलीजुली चीज बन गई है, हाइब्रिड।
हमारे पार्क वगैरह भी तो ऐसे ही हैं, इंसानी मैनेजमेंट पर टिके हुए हैं।
सही कहा। तीसरा है इंसानी अहंकार बनाम प्रकृति की जटिलता। हमें लगता हम सब कंट्रोल कर लेंगे,
पर प्रकृति हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है, हमारे कामों के अनचाहे नतीजे निकलते हैं।
हाँ, ये किताब हमें थोड़ा विनम्र होना सिखाती है। चौथा है तकनीकी समाधानों का आकर्षण और खतरा।
हर चीज का टेक फिक्स आसान लगता है, पर असली मुद्दों से ध्यान हट जाता है
और नए जोखिम पैदा होते हैं, जैसा हमने देखा। और पांचवा, नए नैतिक सवाल।
हाँ, कि अब सवाल ये नहीं कि दखल दें या नहीं, बल्कि कैसे दें, किसके पास हक है ये सब करने का,
कौन तय करेगा, किसके फायदे के लिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है।
किताब में कुछ लाइनें या विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे वो स्टीवर्ट ब्रांड का उद्धरण।
हाँ, हम भगवान जैसे बन गए हैं और अब हमें इसमें माहिर होना होगा।
इसका क्या मतलब निकाला जाए?
शायद ये कि हमने इतनी ताकत पाली है, चाहे अनजाने में, कि अब जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हमें सीखना होगा कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें।
एक और विचार था कि प्रकृति की ओर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है,
क्योंकि वापस जाने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। ये उस ख्याल को तोड़ता है कि हम किसी पुरानी शुद्ध प्रकृति में लौट सकते हैं।
शायद वो मुमकिन ही नहीं, तो फिर क्या?
तो फिर शायद ये कि चुनाव ये नहीं कि हस्तक्षेप करें या ना करें, बल्कि ये कि बेहतर तरीके से हस्तक्षेप कैसे करें।
मतलब दखल तो होगा ही, अब उसे समझदारी से करना सीखना है।
हाँ, और जियो इंजीनियरिंग के बारे में वो कहती हैं कि ये शायद कोई अच्छा विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी का सौदा हो सकता है।
जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब।
शायद ये इसकी गंभीरता दिखाता है।
और आखिर में वो एहसास कि शायद हमारे पास ग्रह का प्रबंधन करने के अलावा कोई चारा ना हो, लेकिन ये एक डरावनी संभावना है।
हाँ, ये डर और मजबूरी का मिलाजुला एहसास, यही शायद किताब का सार है।
तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, इनका हमारी रोज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है, हम क्या कर सकते हैं?
देखिए, पहली चीज तो ये कि हम किसी भी नई तकनीकी चमत्कार को थोड़ा शक की नजर से देखें, सवाल पूछें
कि इसके पीछे क्या है, इसके अनचाहे नतीजे क्या हो सकते हैं, क्या ये असली जड़ पर काम कर रहा है।
बिल्कुल। दूसरी बात, ये हमें पर्यावरण के मुद्दों को ज्यादा गहराई से, ज्यादा संतुलित नजरिए से देखना सिखाती है। चीजें सिर्फ काली या सफेद नहीं होती,
हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, हमें पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करनी चाहिए।
तीसरी बात, जियो इंजीनियरिंग जैसी चीजों के बारे में जानना, ये अभी दूर की बातें लगती हैं, पर इन पर फैसले होंगे, हमें जागरूक रहना होगा
ताकि हम भी अपनी राय रख सकें।
जी, और शायद सबसे अहम बात जो आपने पहले भी कही, विनम्रता।
जानना, ये समझना कि हमारे हर काम का असर होता है,
और शायद बड़े तकनीकी समाधानों के इंतजार से बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी में छोटे मगर सार्थक बदलाव लाएं, अपनी खपत कम करें, अपनी जीवन शैली बदलें।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या है?
मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक यही है कि हम चाहते हुए या न चाहते हुए इस ग्रह के मैनेजर बन गए हैं, लेकिन हम इस रोल के लिए तैयार नहीं हैं। आगे का रास्ता मुश्किल है, नैतिक दुविधाओं से भरा है।
हाँ, और आसान जवाब कहीं नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से वो प्रकृति को बचाने के चक्कर में उसे और कृत्रिम बनाने वाली बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है, वो पफिश की नकली गुफा।
हाँ, वो एक प्रतीक की तरह है। कोलबर्ट हमें तैयार जवाब नहीं देती, पर वो हमें सही सवाल पूछना सिखाती हैं, और यही इस किताब की ताकत है, वो हमें जगाती हैं।
बिल्कुल। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।